السلام علیکم، یہ پارٹ 7 ہے ناول عرب کا چاند مشرق کی حور۔ یہ ناول 30 باب پر مشتمل ہے۔ یہ ناول نابینا خواتین حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز کمل خلیل، پیشکش محمد اظہر، مصنف صادق حسین صدیقی سدنوی۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 7۔ مجبور ہو کر ریاض نے کہا، زیادہ تر عرب کی دو شیزہ لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن لبنا، میرونا نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ریاض، جی ہاں۔ لبنا کے مسیحا صفت لبوں پر ہوش ربا تبسم نمودار ہوا، اس کی آنکھوں میں سحر خیز چمک پیدا ہوئی، چاند سے زیادہ روشن رخسارے چمک اٹھے۔ میرونا نے اس کی کیفیت دیکھی، اس کے چہرے سے کبیرگی کے آثار ظاہر ہوئے، اس نے اپنا منہ پھیر لیا۔ اب یہ لوگ پہاڑی سلسلہ کو ختم کر کے میدان کو طے کرنے لگے تھے۔ میدان نہایت وسیع تھا، حد نگاہ پر خیموں کی چوٹیاں دور تک چمکتی نظر آ رہی تھیں۔ اس وقت آفتاب مغرب کی طرف زیادہ جھک گیا تھا، دھوپ میں نہ دوپہر جیسی تمازات رہی تھی نہ سفیدی، وقت کسی قدر خوشگوار ہو گیا تھا، دھوپ کی رنگت زردی مائل ہو چکی تھی۔ کتارس نے مسرت خیز لہجے میں کہا، ہم اپنے کیمپ کے قریب پہنچ گئے، جس وقت کفور کا بادشاہ بولیس اور دوسرے لوگ سنیں گے کہ میں نے شیر دل مسلمانوں کو گرفتار کیا ہے، نہایت خوش ہوں گے، عیسائی دنیا میں تعریف کرے گی۔ رباز اور ہورش لبنا سامنے کی طرف دیکھ رہے تھے، انہوں نے اس کی بات نہ سنی۔ فاصلہ کم رہنے کی وجہ سے عیسائیوں کا کیمپ صاف نظر آنے لگا تھا۔ میدان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک خیمے، چھولداریاں اور سائبان نصب تھے۔ دور سے دیکھنے سے اب معلوم ہوتا تھا جسے کہ کوئی بڑا شہر آباد ہو۔ کتارس نے کسی قدر رفتار تیز کر دی، اس کی تقلید میں سب کو تیز کرنا پڑا، چونکہ ان سب کا ہر قدم کیمپ کی طرف بڑھ رہا تھا، اس لیے کیمپ قریب ہوتا جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ لوگ کیمپ میں داخل ہوئے، عیسائی سوار اور پیادے کیمپ میں پھر چل رہے تھے، ان کی جمعیت بہت زیادہ تھی، وہ کئی میل کے طول عرض میں بکھرے پڑے تھے۔ کیمپ نہایت کرینے سے ڈالا گیا تھا، خیمے قطاروں در قطار نصب تھے، خیموں کی ہر قطار کے سامنے کافی راستے آمد و رفت کے لیے چھوڑے گئے تھے، خیموں کی قطار اور راستے کے دوسری طرف چھوڑ داریاں تھیں، چھوڑ داریوں کے قریب سائبان تھے، سائبانوں کے نیچے گھوڑے کھڑے تھے، سائبانوں کی دوسری طرف 70 فٹ عریض راستہ چھوڑا گیا تھا، راستے کے بعد پھر خیموں کی قطار تھی، پھر چھوڑ داریاں تھیں، پھر سائبان تھے اور پھر راستہ تھا۔ اس طرح عیسائی کیمپ دور تک پڑا ہوا تھا۔ ریاض اور لبنا حیرت خیز نظروں سے اس ٹڈی دل لشکر کو دیکھنے لگے۔ اسلامی لشکر کا اس لشکر کے مقابلے میں کوئی تناسب نہ تھا۔ انہیں تعجب ہوا کہ اس قدر کثیر لشکر ہونے کے باوجود عیسائی یہاں سے بڑھ کر مسلمانوں پر کیوں حملہ نہیں کرتے۔ یہ لوگ عیسائی کیمپ کو طے کر رہے تھے، عیسائی سرداروں کے قیام پر عیسائی جھنڈے لہرا رہے تھے۔ یہ لوگ تقریباً ایک میل چلے تھے کہ انہوں نے چند سواروں کو داہنی طرف سے آتے ہوئے دیکھا۔ آنے والے سوار سب کے سب معزز معلوم ہوتے تھے، وہ بیش قیمت ریشمی کپڑے پہنے ہوئے تھے، سروں پر کلگیاں لگائے ہوئے تھے۔ انہیں آتے ہوئے دیکھ کر کتارس رک گیا، اس کے تمام ساتھی بھی رک گئے۔ آنے والے سوار ان کے قریب آئے، انہوں نے استعجاب کی نظروں سے کتارس کو دیکھا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، کتارس تم زندہ ہو، لیکن یہ افواہ کیسی گشت لگا رہی ہے؟ کتارس نے متعجبانہ نظروں سے اس سوار کو دیکھ کر کہا، کیا کیسی افواہ؟ وہی شخص، تمام کیمپ میں یہ خبر گرم ہے کہ تمہیں مسلمانوں نے گرفتار کر لیا ہے، یہ قتل کر ڈالا۔ کتارس مسکرایا، اس نے کہا، دہشوار کے اس طرف پہاڑی درے میں کچھ مسلمانوں سے جھڑپ ہو گئی تھی، میں نے تمام مسلمانوں کو گرفتار کر لیا، میرا جانباز لشکر ان قیدیوں کو لے کر پیچھے آ رہا ہے، وہی شخص ممکن ہے یہی بات ہو۔ کتارس نے جوش میں آ کر کہا، یہی بات ہے، دیکھتے نہیں ہو، وہ مسلم قیدی، ایک نوجوان اور ایک دوشیزہ لڑکی میرے ساتھ ہے۔ اس شخص نے اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہمراہیوں نے نظر اٹھا اٹھا کر ریاض اور ہورش لبنا کو دیکھا۔ وہ ریاض کا مردانہ حسن اور پیتر حسن لبنا کا چاند سا مکھڑا دیکھ کر سخت متعجب ہوئے۔ اسی شخص نے پھر کہا، بے شک آپ کے کال کی صداقت موجود ہے، لیکن تمہارے گرفتار ہونے کی خبر بد کیسے اڑی؟ کتارس، یہ اسلامی جاسوسوں کی کارروائی معلوم ہوتی ہے،
वही शख्स शायद ऐसा ही हो। अब आप कहाँ जा रहे हैं? कितारस, मैं थक गया हूँ, अपने खेमे पर जाकर आराम करना चाहता हूँ। वही शख्स, आपकी वजह से तमाम ईसाई मुतफक्किर हैं। इस वक्त मजलिस शोरा का इजलास हो रहा है। अगरचे आप थके हुए हैं, मगर खेमे पर जाने से कब आपका मजलिस शोरा में शरीक होना ना सिर्फ मुनासिब ही है बल्कि ज़रूरी है। कितारस, दोस्त शार्डिल, अगरचे मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन मजलिस शोरा में ज़रूर शरीक होऊंगा। तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? जो शख्स कितारस से हमकलाम हो रहा था, इसका नाम शाउल था। वो अजमूनिन का बादशाह था, नहायत पुरजोश ईसाई था। उसने जवाब दिया, मैं भी मजलिस शोरा में ही जा रहा हूँ। कितारस, चलो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। ये कहते ही कितार और उसके हमरा ही भी शाउल और उसके हमराइयों के साथ रवाना हुए। वो कर्ब की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में जो ईसाई सवार या प्यादा वगैरह इन्हें मिलता, नहायत अदब से उसे सलाम करते थे। तकरीबन 1 मील चलकर वो एक बड़े खेमे के सामने पहुंचे। ये खेमा एक मुसत्ता टीले पर नस था। नहायत वसी खेमा था, इसमें मुतअद्दिद 24 लगी हुई थी। सबसे ऊंची चौप पर एक बड़ा झंडा लहरा रहा था। ये झंडा जर्द रंग के हरीर का था, जिस पर सुख रंग से सूरज का निशान बना हुआ था। ये झंडा बोरिस का था, जो कुफूर का बादशाह था। खैमे के भाई इसके चारों तरफ 100 सिपाही लेल कांटे से लीस पहरा दे रहे थे। वो सब नंगी तलवारें लिए खड़े थे, टीले से नीचे सवार पहरा दे रहे थे, वो भी शमशेर बरहाना खड़े थे। इन्होंने कितारस, शाउल और इनके हमराइयों को देखते ही फौजी तरीके से इन्हें सलाम किया। ये सब लोग घोड़ों से उतरे। चंद पहरा वाले सवारों ने बढ़कर आके घोड़ों की बागें पकड़ ली और शुमारी जानिब जहां और घोड़े खड़े थे इनके बराबर ले जाकर खड़ा कर दिया। कितारस, शाउल और इनके हमराही टीले पर चढ़े। यहां इन्हें सिपाहियों ने सलाम किया। एक सिपाही ने जल्दी से बढ़कर पर्दा उठाया। ये सब खेमे में दाखिल हुए। खेमे के अंदर फर्श हो रहा था, फूलदार जर रंग के कपड़े का फर्श था। फर्श पर शमलन जनूबन कतार दर कतार कुर्सियां पड़ी थी। कुर्सियों के ऊपर ईसाई सवार बैठे थे। मगरिब की तरफ एक तख्त बिछा था। तख्त के ऊपर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। ये ईसाई नहत तनोमन था। इसकी दाढ़ी में कोई कोई बाल सफेद था, चेहरा सुर्ख और सफेद था, पेशानी तंग और आंखें छोटी छोटी थी। इसकी सूरत से कायापन टपकता था। वो फरेबी और चालाक मालूम होता था। इसका नाम बोलिस था। यही कुफूर का बादशाह और इसी लश्कर का कायदे आजम था। इसके सामने तख्त के करीब एक ईसाई खड़ा था। बोलिस के दाहिनी तरफ तख्त के बराबर चंद कुर्सियां पड़ी थी। इन कुर्सियों पर पतरस, बोलिस का भाई, मकसू बजावत का बादशाह अलीफ, मुल्क नोबा का बादशाह अरमानूस, देशवार का बादशाह और चंद और सरबरा आवरदा ईसाई बैठे थे। तख्त के बाएं तरफ भी कुर्सियां पड़ी थी। इन पर सफेद रेश बुढ़े पादरी लंबे लंबे चोगे पहने, सीनों पर सुख रंग की सलीबे लगाए, कमर रेशम की मजबूत दोड़ों से बांधे खामोश बैठे थे। कितारस और शाउल के हमराही तो दरवाजों से बढ़ते ही कुर्सियों पर बैठ गए, लेकिन वो दोनों रियाज लुबना और मेरूना को लेकर आगे बढ़े। उन्होंने तख्त के करीब जाकर बोलिस को सलाम किया और बोलिस ने हैरत से कितारस को देखते हुए कहा, तुम कितारस? वो कितारस, तुम जिंदा हो? खुदा और खुदावन हजरत ईसा का शुक्र है। कितारस ने कहा, आलीजा, हाँ, मैं ना सिर्फ जिंदा हूँ बल्कि मुसलमानों पर नुमाया फतह हासिल करके उनके 200 दिलेर असीर करके लाया हूँ। बोलिस और भी मुतअज्जिब हुआ। उसने जल्दी से दरियाफ्त किया, कैदी कहाँ है? जो शख्स बोलिस के सामने तख्त के बराबर खड़ा था, उसने कहा, हजूर वाला, मुसलमानों ने अपने कैदी छुड़ा लिए, आपके लश्कर का बड़ा हिस्सा मार डाला, कुछ सवार गिरफ्तार कर लिए, बाकी लश्कर परागंदा होकर भाग गया। कितारस ने अभी तक इस शख्स को ना देखा था। वो इसी के लश्कर का एक सरदार था। इसका नाम रोमानूस था। कितारस ने उसे दरियाफ्त किया, ये वाक्य कब हुआ? रोमानूस, जब आप मुसलमानों को हमारी हिरासत में देकर चले आए थे और हम आपके पीछे आ रहे थे, इस वक्त चूंकि आप हमें रास्ते में नहीं मिले, इसलिए हमें ये ख्याल गुजरा कि गालिबन आपके दुश्मनों को मुसलमानों ने गिरफ्तार कर लिया या मार डाला। ये सुनकर कितारस को कमाल रंज हुआ, उसका चेहरा उतर गया। उसने ठंडा सांस भर के कहा, खुदा की कसम, ये मुसलमान इंसान नहीं है। कमबख्त अव्वल तो हाथ ही नहीं आते, और अगर आ भी जाते हैं तो 1000 तालों में रखने पर भी निकल जाते हैं। बोलिस ने कहा, अफसोस ना करो, मैं अब तक गुजर कर रहा था, समझता था कि मुसलमान हमारी कसरत देखकर वापस चले जाएंगे, लेकिन वो वापस नहीं गए, बल्कि खिलाफ तौके इन्होंने हमारे लश्कर पर हमला कर हमारे बहुत से जांबाजों को मार डाला और गिरफ्तार कर लिया है। अब मैं बेकार वक्त जाया ना करूंगा, तुम बैठो, देखो मजलिसे शोरा किस नतीजे पर पहुंचती है। कितारस और शाउल आगे थे, उनके पीछे रियाज, लुबना और मेरुना खड़ी थी। बोरिस ने अभी तक इन्हें ना देखा था। जब कितारस और शाउल दोनों हटकर दाहिनी तरफ कुर्सी पर बैठ गए, तब बोरिस ने इन तीनों को देखा। अगरचे मेरुना भी हसीन थी, लेकिन वो लुबना जैसी हसीन ना थी। बोलिस की नजर लुबना पर पड़ी, वो इस्तेजाब भरी नजरों से इस होलिश को देखने लगा। लुबना के चेहरे पर इस गजब की मलाहियत थी कि जो इसे एक नजर देख लेता वही इसका गर्विदा हो जाता था, क्योंकि तजल्ली हुसन नजर भर कर इसके चांद जैसे चेहरे को ना देखने देता था, इसलिए नाज़रीन की होश देर पूरी ना होती थी। इस वक्त इस अरब वो जो अरब के चांद को हर पादरी, हर बादशाह, हर सरदार नदियों की तरह देख या घूर रहे थे। थोड़ी देर तक महफ देख दीद रहने के बाद बोरिस ने कितारस से दरियाफ्त किया, ये खूबसूरत लड़की कौन है? कितारस ने खड़े होकर जवाब दिया, ये एक अरबी लड़की है। बोलिस, किस कदर खूबसूरत है, मैंने आज तक ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, ये तुम्हारे साथ कहाँ से आई है? अब कितारस ने मुख्तसर तौर पर सब वाकया सुनाए। बोलिस ने कहा, अच्छा, इस मुसलमान और इस लड़की को अभी हिरासत में रखो। कितारस ने रियाज और लुबना को वहां से हटाकर इस तरफ जा खड़े हो जाने का इशारा किया, जिस तरफ कितारस ने इशारा किया था। मेरुना कितारस के पास एक कुर्सी पर जा बैठी। बोलिस ने कदरे बुलंद आवाज से कहा, ईसाई बहादुरों, मुसलमानों के चेहरा दस्तियां हद से गुजर गई हैं। आज इन्होंने हमारे हजारों जांबाजों को मार डाला और गिरफ्तार कर लिया है। ईसाइत को इस्लाम का जबरदस्त खतरा लाहक हो गया है। मुल्क शाम से ईसाई हुकूमतों का जनाजा निकल चुका है। हमारी ऐश परस्तियों ने हमें ला मजहब कर दिया है। हम खुदा और खुदावंद को भूल गए हैं, खुदा ने हमें भुला दिया है। अभी वक्त है, ला मजहबी छोड़कर खुदा को खुश कर लो, यकीनन तुम कामयाब होंगे। मेरा इरादा यह है कि हम अब मुसलमानों के बढ़ने का इंतजार ना करें, खुद उन पर योरिश कर दें। अगर इसमें कोई कबाहत मालूम होती हो तो आप बताएं। बोरिस खामोश हो गया। थोड़ी देर यहाँ बिल्कुल खामोशी तारी रही। कुछ अरसे के बाद अलीफ ने कहा, मैं पहले ही चंद मरतबा अपने ख्याल का इजहार कर चुका हूँ। मेरे ख्याल में हमारे इस जगह पड़े रहने से मुसलमानों ने ये समझ लिया है कि हम इनसे डर गए हैं, इसलिए इन्हें इस कदर जुर्रत हुई कि वो बढ़ बढ़ कर हमारे लश्करों पर हमला करने लगे। जब हम इन पर योरिश करके ना पहुंचेंगे, इनकी जसारत कम ना होगी। मकसू ने कहा, बेशक यही बात है, हमारे यहाँ पड़े रहने से हम पर बुजदली का इतलाक होता है। बोलिस, जब ये बात है तो लश्कर को तैयारी का हुक्म दे दो, तमाम लश्कर कील कांटे से लीस हो जाए, हम अनकरीब यहाँ से कूच करेंगे। क्योंकि मशवरा ख़त्म हो चुका था, इसलिए मजलिस बर्खास्त कर दी गई। सब लोग उठ उठ कर बाहर जाने लगे। सब के बाद कितारस, हुरुश, लुबना और रियाज को हमरा लेकर चला। मेरुना भी इसके साथ चली। बाब 11, जेल खाने में हुसन की झलक। कितारस, रियाज, लुबना और मेरुना को साथ लेकर अपने खैमा पर पहुंचा। चूंकि वो अंदबा के बादशाह जर्जिस का चचाजाद भाई था, शहजादा था, सलीबी मुजाहिद था, इसलिए शहजादों की इसी शान से रहता था। इसका आलीशान खेमा एक वसी मैदान में नष्ट था। एक खेमा मेरुना का था, एक नष्ट गाह का, एक जायद था। इन शाही खेमों के अलावा इनसे किसी कदर फासले पर चारों तरफ गोल दायरे में इसके लश्कर के खेमे नष्ट थे। कितारस अपने खेमे पर पहुंचा, इसके मुलाजमों की पलटन इसके खैर मकदम के लिए दौड़ी। सब ने एक कतार में खड़े होकर कितारस को सलाम किया। कितारस ने सलाम का जवाब देकर एक बड़े नौकर से कहा, अरमानूस, ये अरब शाही कैदी हैं। इस नौजवान और इस खूबसूरत लड़की को अपनी हिरासत में कर लो। बराबर वाले खेमे में इन्हें नजरबंद कर दो। इनकी काफी नजरदाश्त रखना, ऐसा ना हो कि धोखा देकर फरार हो जाएं। इस बुढ़े का नाम अरमानूस था। उसने कहा, हजूर वाला, आप बेफिक्र रहें, मैं पूरी निगरानी रखूंगा। कितारस मेरुना को हमला लेकर अपने खेमे में चला गया। अरमानूस ने रियाज से कहा, ओ बदबख्त अरबी नौजवान, तुम माँ इस दोशेज़ा लड़की के मेरे साथ आओ। रियाज को इसका इस तरह मुखातिब करना सख्त नागवार गुजरा, लेकिन एक तो वो कैदी था, दूसरे उसने ख्याल किया कि नौकर के मुंह ना लगे, इसलिए दरगुजर किया और चुपचाप माँ हुरुश लुबना के उसके पीछे रवाना हुआ। अरमानुस इन्हें हमरा लेकर खेमे के अंदर पहुंचा। यह खेमा मामूली और छोटा था, चटाई का फर्श था, इसमें कोई सोफा, कोई कोच और कोई कुर्सी वगैरह कुछ ना था। ऐसा मालूम होता था जैसे वो मुलाजमों के इस्तेमाल में आता हो। अरमानुस ने कहा, तुम दोनों यहाँ ठहरो, एक बात सुनो और ख्याल रखो, मुझे तुम्हारी निगरानी पर मुकर्रर किया गया है। मैं जहाँ देदा हूँ, मेरे आका को मेरे तेज फहमी पर भरोसा है। तुम यहाँ से भागने की कोशिश ना करना, मेरी निगाहों से बचकर तुम भाग ना सकोगे। अगर तुमने जरा भी बेजा हरकत की तो सख्त से सख्त सजा पाओगे। रियाज ने इसकी तरफ से मुंह फेर लिया। इसने भी जवाब का इंतजार ना किया, वो खैमे से निकलकर बाहर चला गया। अब रियाज और होरोज लुमना खैमे में रह गए। इस वक्त आफ्ताब गुरूब हो चुका था। मशरिक की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता स्याही बढ़कर तमाम कायनात पर छा गई थी। अच्छा खासा अंधेरा हो गया था। आसमान पर कहीं कहीं सितारे चमकने लगे थे। चूंकि खेमे में रोशनी ना थी इसलिए बहुत ज्यादा तारीकी छाई हुई थी, मगर अंधेरे में भी होरुस लुमना का चेहरा इस तरह चमक रहा था जिस तरह चौदहवीं रात का चांद हल्का बादल आ जाने पर उड़ने से कुछ फीका फीका चमका रहता करता है। दोनों अरमानुस के चले जाने पर चटाई के ऊपर बैठ गए। दोनों ख्यालात की गहराइयों में उलझे हुए थे। दोनों फलक की निरंगी तकदीर की गर्दिश जमाने के चक्कर में आकर अजीजों, दोस्तों, मुसलमानों से बिछड़ कर गैर और गैर मजहब वालों के हाथों में गिरफ्तार हो गए थे। अपने तकदीर, अपनी हालत पर अफसोस कर रहे थे। थोड़ी देर तक तो वो चुपचाप बैठे रहे, लेकिन खामोश बैठने, अफसोस करने से इनके दिल कुचले जाने लगे। गम की फौज ने इन पर चढ़ाई शुरू कर दी। वो समझ गए इस तरह रंजो गम का वो मुकाबला ना कर सकेंगे, इसलिए उन्होंने गुफ्तगू का आगाज किया। रियाज ने दरियाफ्त किया, लुबना तुम इन दरिंदे सिर्फ ईसाइयों में कैसे आ फंसी? लुबना ने मौसी की नमाज लहजे में जवाब दिया, किस्मत ने ला फंसाया और क्या कहूँ। रियाज को मालूम था कि लुबना ईसाइयों में कैसे आई, और ना लुबना को खबर थी कि रियाज कैसे आ गया। रियाज ने फिर दरियाफ्त किया, किस्मत ने तोला ही फंसाया है, लेकिन किस तरह? लुबना, मैं सैर करने आई थी, मज़ा और सलमा मेरे साथ थी, अचानक 50-60 सवार हम पर आ पड़े, वो दोनों ना मालूम कहाँ चली गई। मैं भागी लेकिन तेज ना भाग सकी, पकड़ी गई। लुबना बहुत ज्यादा उदास, गमगीन और मुस्तरब थी। अगरचे रियाज भी गमजदा था, लेकिन वो मर्द था। जो मुसीबत, जो गम, जो दुख उस पर आ पड़े थे वो उनको बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन होरुश लुबना हसास ज्यादा थी, इसे गम और तकलीफ का ज्यादा एहसास था। रियाज ने इसका ख्याल बटाने, गम को कम करने और इसके नाजुक दिल से उल्फत को दूर करने के लिए मुस्कुरा कर कहा, तुम नाजुक थी, नजाकत ने तुमको तेज न दौड़ने दिया, इसलिए तुम गिरफ्तार हो गई। परी पेकर लुबना ने बेसाख्तापन से कहा, नहीं रियाज, मैं तेज, बहुत तेज दौड़ी, मगर उन कम वक्तों ने मेरा ही पीछा किया और मुझे पकड़ लिया। रियाज, तुम खूबसूरत थी, फूल से ज्यादा दिलफरेब थी, इसलिए उन्होंने तुम्हारा भी पीछा किया। लुबना ने अब रियाज की शरारत अंगेज गुफ्तगू को समझा और वो शर्मा कर खामोश हो गई। इस वक्त रात ज्यादा हो चुकी थी, अंधेरा ज्यादा फैल गया था। लुबना के शर्माने की अदा बोझ अंधेरा होने के रियाज न देख सका। अलबत्ता इस सेम तन के खामोश होने से वो समझ जरूर गया कि लुबना शर्मा गई है। रियाज कुछ कहना ही चाहता था कि अरमानुस रोशनी लिए खेमे में दाखिल हुआ। ये मोमबत्ती थी। खेमे की चौप में एक तख्ती लगी हुई थी। इसने तख्ती पर मोमबत्ती रख दी और बगैर कुछ कहे सुने चला गया। अगर यह खेमा छोटा था, लेकिन मोमबत्ती की मध्यम रोशनी इसे काफी रोशन न कर सकी, फिर भी थोड़ा उजाला हुआ। खेमे के अंदर की चीजें साफ तौर पर नजर आने लगी। रियाज ने परी जमाल लुबना को देखा। इसकी चांद सी सूरत चमक रही थी, मोटी मोटी सिया सरमगी आंखें बिजलियां गिरा रही थी। रियाज ने फिर कहा, हाँ तो इन्हें तुम ही पसंद आई, तुम्हारा ही पीछा किया और तुम्हें पकड़ लिया। लुबना ने ऐसी नजरों से जिनमें शोखी आ गई थी, शोखी ने चमक पैदा कर दी थी, रियाज को देखा। हूर अदा दो शेजा की मसीहा सिर्फ लबों पर तबस्सुम खेल रहा था। इसने कहा, हाँ उन्होंने मुझे पकड़ लिया। रियाज ने इसकी सहर खेज आंखों को देखकर कहा, अरब का चांद या दुनिया हुसन की हूर समझकर। लुबना ने बर के पास तबस्सुम के साथ जवाब दिया, जो कुछ तुम समझो। रियाज ने जल्दी से कहा, मेरी समझ को रहने दो, तुम्हें देखने वाले तुम्हें परी हुसन की देवी, अरब का चांद, दुनिया की हूर और खुदा जाने क्या क्या कहते हैं, मगर मुझसे कोई पूछता ही नहीं। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बताऊं कि तुम क्या हो। लुमना के नाजुक लबों पर अब भी तबस्सुम खेल रहा था, आंखों में सहर खैर चमक थी। इसने शौकी भरे अंदाज में कहा, कोई नहीं पूछता तो तुम खुद ही बता दो। रियाज ने अज खुद रफ्तगी के अंदाज से कहा, तुम खुदाए हुसन हो, पेकर नाज हो, मसीह जमा हो। लुबना ने कतई कलाम करके कहा, मेहरबानी करके खामोश रहिए। रियाज, लुबना खुदा की कसम तुम बेहतरीन हसीना हो, इंसान जिन फरिश्ते सब तुझ पर तेरे लिए बेपनाह हुसन पर एक जान से नहीं हजार जान से शिफ्ता हैं। लुबना ने टालने के तौर पर कहा, रियाज तुम पहाड़ी चट्टानों पर कैसे पहुंच गए थे? रियाज हुसन की कशिश खींच लाई थी। लुबना ने शहजादी जैसी शान से कहा, ठीक ठीक बताओ। रियाज, लुबना में महसूस करता हूँ कि मैं नहायत जलील कमीना और बदतर शख्स इंसान हूँ। साथ मेरा दोस्त है और तुम साथ की हमशीरा हो। मुझे अपने दोस्त की हमशीरा से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऐसा किया। मैंने दोस्ती की तहकीर की, निदामत और शर्म ने मुझे घेर लिया। मैं सांस से आंखें चार ना कर सका, रात को छुप कर भाग गया। मगर मोहब्बत की जंजीर जो मेरे पाँव में पड़ गई थी, वो कशा कशा खींच कर मुझे तुम्हारे पास ले आई। लुबना सुनो, मैं और तुम दोनों कैदी हैं, ना मालूम किस वक्त जुदा कर दिए जाएं। हमें आइंदा गुफ्तगू करने का मौका मिले या ना मिले, इसमें शक नहीं, मैं तुम्हारा गर्दीदा हूँ। तुम्हारी मोहब्बत मेरी रग रग में सरायत कर गई है, अब ये निकलने वाली नहीं। लेकिन मैं इंसान हूँ, खुददार हूँ, दिल पर जबर करूँगा। जबान से इस वक्त तक कुछ ना कहूँगा जब तक कि मौत मुझे अपनी आगोश में ना ले ले। दोस्ती का इक्तदा यही है। खुदा के लिए तुम किसी वक्त ये ना समझ लेना कि मैं तुमसे बेरुखी कर रहा हूँ। मैं तुमसे मर कर भी बेरुखी ना कर सकूँगा। लुबना ने कता कलाम करके कहा, रियाज ऐसी बातें ना करो। रियाज खामोश हो गया, वह अफसरदा नजर आने लगा। लुबना को भी इसकी अफसरदगी ने अफसरदा कर दिया। दोनों खामोश होकर फिर अपने अपने ख्यालात में उलझने लगे। थोड़ी देर के बाद अरमानुस खाना लेकर आया। दोनों ने कुवते लामायूत के लिए कुछ खाया। जब अरमानुस बाकी खाना लेकर चला गया तो दोनों ने तयम्मम करके नमाज पढ़ी और दोनों चटाई पर पड़ गए। क्योंकि दोनों अपने अपने ख्यालात में उलझे हुए थे, इसलिए देर तक पड़े जागते रहे। दोनों एक दूसरे की तरफ से करवट ले रखी थी, गोया दोनों एक दूसरे को भूलना चाहते थे। लेकिन मोहब्बत की आग जो दोनों के दिलों में लग चुकी थी, वो कैसे भूलती। कुछ देर इस तरह पड़े रहने के बाद रियाज ने यह देखने के लिए कि लुबना सो गई है या जागती है, इसकी तरफ करवट ली। जबकि रियाज के दिल में यह ख्याल गुजरा, ठीक उसी वक्त लुबना के दिल में भी यह ख्याल पैदा हुआ और उसने भी करवट ली। इस तरह दोनों ने एक ही वक्त में एक ही ख्याल से करवट ली। ये इसी मोहब्बत या दिली लगाव का बाइस था जिसको वो अपने दिल से निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब दोनों के मुंह एक दूसरे के सामने हो गए। बत्ती की मधम सी दर्जा रोशनी दोनों के खूबसूरत चेहरों पर पड़ने लगी। एक ने दूसरे को नीम बाद आंखों से देखा। दोनों जाग रहे थे। दोनों ने इस बात को समझ लिया। दोनों एक दूसरे को जी भरकर सारी रात देखना चाहते थे, लेकिन रियाज की नदामत लुबना की खुददारी माने थी। दोनों खामोश आंखें बंद किए पड़े थे। पिछले पहर दोनों को नींद आ गई, दोनों सो गए। सुबह सवेरे दोनों बेदार हुए। हवाई जरूरी से फारिग होने के लिए वो खैमे से बाहर निकले। बाहर पहरा वाले खड़े थे। मालूम होता था कि रात फिर उनके खैमे की गिर्द पहरा रहा था। पहरा वालों की निगरानी में उन्होंने हवाई जरूरी से फराख्त पाई। खैमे में दाखिल होकर नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर दोनों बैठ गए। थोड़ी देर के बाद सूरज निकल आया। आफ्ताब की जर्द जर्द किरणें दरख्तों और खैमों की चोटियों पर लौटने लगी। इस वक्त उन्होंने नकारों की आवाज़ें सुनी, साथ ही कुछ शोरगुल की आवाज़ें भी आने लगीं। इन्हें ताज्जुब हुआ कि ये शोरगुल कैसा है, नकारे क्यों बज रहे हैं। अभी वो किसी नतीजे पर ना पहुंचे थे कि परी जमाल मेरूना खैमे में दाखिल हुई। बाप 12 गम अंदोज नज़ारा। मेरूना को देखते ही दोनों बेख्तियाराना तरीके पर इसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। मेरूना हसीन थी, खुश जमाल थी। इसकी पेशानी खंदा जमीनी की वजह से हर वक्त शगुफ्ता रहती थी। इस वक्त इसके नाजुक लबों पर हल्का तबस्सुम नमूदार था। वो इन दोनों की तरफ बढ़ी, इनके करीब पहुंची। उसने कहा, सुबह बखैर। रियाज में सुबह होते ही तुम्हें देखने के लिए चली आई। रियाज ने इसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन लुबना ने इसे रश्क और ताज्जुब की मिली जुली नजरों से देखा। लुबना ने अरबस्तान में परवरिश पाई थी। इस मुल्क में इन लोगों में पल कर जवान हुई थी, जहाँ एक दो शेजा का دو شیزہ کا اپنی زبان سے اظہار محبت کرنا معیوب تھا، وہ عیسائیوں کی معاشرہ سے بے خبر تھی۔ اس نے میرونا کی صاف مگر بے حجابانہ گفتگو کو بے شرمی محمول کیا۔ میرونا نے ریاض کو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ریاض بھی ہمہ تن اس کی طرف متوجہ تھا۔ لبنہ کی حساس دل پر ریاض کی اس بے وفائی سے چرخا لگا شگفتہ چہرہ پس مردہ ہو گیا۔ نازک مگر مسیحا صفت لبوں کی گلابی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ اس نے زیر لب ایک ہلکی سی آہ لی، ایسی آہ جس کو صرف اس کے دل نے سنا۔ میرونا نے شوخی بھرے لہجے میں ریاض سے دریافت کیا، کہو ریاض، رات تو خوب گزری ہوگی، خیمے میں صرف تم تھے اور عرب کی سب سے زیادہ خوبصورت دوشیرہ تھی۔ ریاض نے کہا، نہیں، ہم صرف دو ہی نہ تھے بلکہ ایک تیسرا بھی تھا۔ میرونا نے تعجب خیز نظر سے ریاض کی طرف دیکھ کر دریافت کیا، وہ تیسرا کون تھا؟ ریاض، وہ خدا تھا جو ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ میرونا کچھ دیر خاموشی، اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ریاض سے کوئی خاص بات دریافت کرنا چاہتی لیکن کسی وجہ سے ہچکچاتی ہے۔ کچھ وقفے کے بعد اس نے اپنا نازک سر اٹھایا، اپنی ہوش وربا آنکھیں ریاض کے چہرے پر جما کر کہا، ریاض، کیا تم نے لبنا کو دنیا بھر کی لڑکیوں سے زیادہ حسین سمجھتے ہو؟ سوال ٹیڑھا تھا۔ ریاض سر جھکا کر جواب سوچنے لگا۔ لبنا نے بھی اپنی خوبصورت نظریں اس کے چہرے پر جما دیں۔ کچھ دیر کے بعد اس نے سر اٹھایا، اتفاق کے اس کی نگاہیں ہوروش لبنا کی سحر انگیز نگاہوں سے چار ہو گئیں۔ اس کے جسم میں ارتعاش پیدا ہوا، وہ کانپ گیا۔ میرونا نے اس کی یہ کیفیت دیکھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم کانپ رہے ہو، کیا سردی معلوم ہو رہی ہے؟ گرمیوں کے دن تھے، صبح کا وقت تھا، فرحت بخش ہوا چل رہی تھی، سردی نام کو نہ تھی۔ ریاض کیا جواب دیتا؟ وہ اب بھی خاموش رہا، اس کے چہرے کا رنگ پرواز کرتا چلا جا رہا تھا۔ میرونا نے پھر دریافت کیا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کانپ رہے ہو، تمہارے چہرے کا رنگ اڑا جا رہا ہے، کیا تم کچھ بیمار ہو گئے ہو؟ ریاض نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا، میں بیمار نہیں ہوں، اچھا ہوں۔ میرونا، مگر تمہارے چہرے کا رنگ، ریاض نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، میں نہیں کہہ سکتا، شاید گرمی کا اثر ہو۔ میرونا نے جلدی سے کہا، بے شک بے شک، خیمے کے اندر حبس ہو رہا ہے، آپ خیمے سے باہر چل کر تازہ ہوا میں کھڑے ہوں۔ لبنا، تم بھی کچھ سست معلوم ہوتی ہو، آؤ تم بھی تازہ ہوا میں کھڑی ہو جاؤ۔ میرونا یہ کہتے ہی خیمے کے دروازے کی طرف لوٹی، ریاض اور لبنا بھی اس کے پیچھے چلے۔ اگرچہ لبنا پردہ نشین لڑکی تھی، جب سے ہوش سنبھالا پردے ہی میں رہی تھی، اسے لوگوں کے سامنے جاتے شرم آتی تھی، خصوصاً اس وجہ سے کہ جو کوئی اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، لیکن قدرت نے اسے قیدی بنا دیا تھا۔ وہ اپنی مرضی کی مختار نہ تھی، دوسروں کے ہاتھوں میں تھی، وہ جہاں چاہتے لے جاتے تھے۔ دربار خاص میں وہ پیش کی جا چکی تھی، اس کے پاس کوئی نقاب نہ تھا، کھلے منہ جانا پڑتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ بے پردہ ہونے کی عادی ہو رہی تھی۔ وہ میرونا اور ریاض کے ساتھ خیمے سے باہر نکلی، پہرے والوں نے اسے دیکھا، وہ ایسی نظروں سے اسے گھورنے لگے گویا ان میں سے ہر ایک کی آرزو اسے اپنی آنکھوں یا دل میں چھپا لینے کی ہے۔ اس وقت آفتاب کس قدر بلند ہو گیا تھا، کھلا ہوا میدان ہونے کی وجہ سے دھوپ درختوں کی چوٹیوں خیموں کی بلند چوبوں سے نیچے اتر کر سبزہ زار میدان میں پھیرنے لگیں۔ نکالوں اور شوروں گل کی آواز میں ابھی تک برابر آ رہی تھی۔ جہاں یہ کھڑے تھے وہاں سے دور کسی قدر فاصلے پر کچھ غبار اٹھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ریاض نے میرونا سے دریافت کیا، یہ شور و غل کیسا ہے؟ نکارے کیوں بج رہے ہیں؟ میرونا نے جواب دیا، مسلمانوں کی جسارت، عیسائی کی شکست، مسیحی مجاہدوں کی گرفتاری کا حال سن کر عیسائی سخت برا فروختہ ہو گئے ہیں، پولیس نے لشکر کو روانگی کا حکم دے دیا ہے، 20,000 لشکر روزانہ کوچ کرے گا، آج پہلے لشکر نے کوچ کیا ہے، دیکھتے نہیں ہو وہ سامنے غبار چکر کھا کر آسمان سے ٹکرا رہا ہے؟ ریاض و لبنا نے دیکھا، غبار کے فٹ کے فٹ بلند ہو کر فضا سے ٹکرا کر بادل سے بنتے چلے جا رہے تھے۔ شور و غل اور نکاروں کی آوازیں بھی دم بدم دور ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ ریاض نے پھر دریافت کیا، کل عیسائی لشکر کس قدر ہیں؟ میرونا، 300,000 کے لگ بھگ ہیں۔ ریاض کو بڑی فکر پیدا ہوئی، مسلمانوں کی کل تعداد 20,000 ہی تھی، ان میں سے بہت غیر مسلح تھے، عیسائی مسلح اور 300,000 تھے۔ اس نے دل میں کہا، خدا ہی مسلمانوں کی آبرو رکھے گا۔ میرونا نے پھر کہا، ریاض، मुसलमान इस मर्तबा जरूर कुचल डाले जाएंगे। ईसाई अपनी पूरी जमीयत पूरे साजो सामान के साथ मुसल्ला होकर आए हैं। हमारे साथ 20,000 तो जंगी हैं जिनके सामने इंसानों की कोई हस्ती नहीं। वो खड़े हुए हैं, ऊंचे दरख्त से मालूम होते हैं। इनके चेहरे भयानक, सिया आंखें, लाल सुर्ख अंगारा सी, दांत जर्द जर्द लंबे बाहर को निकले हुए, ऊंट सोटे इस कदर मोटे के इनमें सुराख करके कड़े डाले जाएं तो जिन्हें जंजीरें पड़ी रहती हैं, जो घोड़े की बाघ या ऊंट की नकील का काम देती हैं, जिस पर घुस मारते हैं इसका चूरा कर देते हैं। आम ईसाइयों का ख्याल है कि मुसलमानों को ये जंगी ही पीस डालेंगे, ईसाइयों को लड़ने की नौबत ही ना आएगी। रियाज ने इन जंगियों की बात पहले भी जासूसों से सुना था। इस वक्त मेरूना ने जो डरावनी तस्वीर अल्फाज के जरिए से खींची तो रियाज को बजाय खौफ मालूम होने के इनके देखने का इश्तियाक पैदा हुआ। इसने मेरूना से दरियाफ्त किया, ये जंगी लश्कर के किस तरफ हैं। ये नावेल अरब का चांद मशरिक की हूर का बकिया हिस्सा पार्ट 8 में समाप्त फरमाएं।